नमस्कार भारत, तारीख 13 जून, दिन मंगलवार, मैं हूं प्रभात पांडे। डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका, ट्रंप प्रशासन के ट्रैवल बैन पर लगी रोक जारी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, अपने फंड से राज्य सरकारें करें किसानों के कर्ज माफ।
किसान की समस्या का इतना समाधान नहीं है, हमको प्रोडक्शन सब्सिडी के बोर्ड जाना पड़ेगा जैसे अमेरिका में, ब्याज ही समाजित किया जाएगा, मूलधन माफ होने का कोई विषय नहीं।
बेकाबू भीड़ के गुस्से का शिकार बने लोगों और उनके परिवारों की कहानी आज से शुरू होने वाली हमारी खास सीरीज में।
ने हमारी पर्ची नहीं देखी, हाथ में से लेकर फाड़ कर फेंक दी, सब लोगों को इतना मारा कि हम बेसुध रोड पर गिर दिए।
साथ में चैंपियंस ट्रॉफी की हलचल, लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका के अटर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रैवल बैन पर रोक को बरकरार रखने के अदालत के फैसले का सुरक्षा पर जबरदस्त असर होगा। सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने अमेरिका में प्रवेश के लिए 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर लगी रोक को बरकरार पर रोक लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक को बरकरार रखा है। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। हालांकि अदालत ने कहा है कि सरकार को अमेरिका में आने वाले लोगों की सुरक्षा जांच प्रक्रिया की समीक्षा की अनुमति दी जा सकती है। रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नावाल्नी को बिना मंजूरी के विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के मामले में 30 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले रूस में भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में विशाल रैलियों में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। बीच रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नावाल्नी को मॉस्को में तब गिरफ्तार किया गया जब वो अपने घर से इन प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए निकल रहे थे। अमेरिका ने रूस में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी की निंदा की है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने संसदीय चुनाव में बहुमत खोने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों से चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए माफी मांगी है। टेरेसा मे ने कहा कि उन्होंने ही पार्टी को मुश्किल में डाला है और वो ही पार्टी को मुश्किल से बाहर निकालेंगी। ब्रिटेन में 8 जून को आम चुनाव हुए थे जिसमें सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुमत खो दिया था। हालांकि पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं। टेरेसा मे ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद पर तब तक रहेंगी जब तक कि सांसद चाहेंगी और गठबंधन सरकार बनाएंगी। लेबर पार्टी का कहना है कि सरकार में अफरा तफरी मची हुई है। कतर ने अरब देशों से संबंध खत्म होने के बाद ओमान के रास्ते नई जहाज सेवा शुरू की है। सऊदी अरब समेत अन्य अरब देशों ने कतर से राजनयिक संबंध काट लिए हैं और कतर के लिए अपने जमीनी, समुद्री और हवाई रास्ते बंद कर लिए हैं। ओमान के 2 बंदरगाहों से कतर के लिए खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम शुरू किया गया है। खाने पीने के सामान लिए कतर के लिए ज्यादातर कतर आयात पर ही निर्भर रहता है। सऊदी अरब, बहरीन और संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने कतर पर चरमपंथ को समर्थन देने का आरोप लगाकर संबंध तोड़ लिए हैं। पेरिस में कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने कहा कि कतर खाड़ी देशों से संकट खत्म करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है।
Regarding the negotiation, what would State of Qatar will accept to start to discuss and to negotiate, whatever is related to the collective security.
जहाँ तक बातचीत का संबंध है, हम खाड़ी देशों की सामूहिक सुरक्षा से संबंधित विषयों पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कतर खाड़ी देशों की सुरक्षा पर अपनी नीतियों के असर पर भी बातचीत के लिए तैयार है। ये थे मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाली लीबियाई सरकार के सुरक्षा अधिकारियों ने बीबीसी से कहा है कि ब्रिटेन के मैनचेस्टर में आत्मघाती हमलों की योजना कम से कम पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी। इस हमले में 22 लोगों की मौत हो गई थी। लीबियाई अधिकारियों ने कहा है कि आत्मघाती हमलावर सलमान आबदी पर लीबियाई सुरक्षा अधिकारियों की 1 महीने पहले से ही नजर थी। हमलावर सलमान आबदी के पिता और भाई को लीबिया में हिरासत में रखा गया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव। मैं हूं प्रभात पांडे। कार्यक्रम की शुरुआत अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका लगा है। अमेरिका के एक कोर्ट ने 6 मुस्लिम देशों पर ट्रंप प्रशासन के लगाए गए ट्रैवल बैन पर लगी रोक को जारी रखा है। कोर्ट ने ये पाया कि ये बैन मौजूदा आप्रवासन कानून का उल्लंघन करता है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
अमेरिका में 6 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों पर ट्रैवल बैन के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक को अदालत ने बरकरार रखा है। इससे पहले कई राज्यों की अदालतें राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रैवल बैन के इरादे पर पानी फेर चुकी हैं। ताजा फैसला हवाई राज्य में आया है, जब जज ने कहा है कि ये कार्यकारी आदेश मौजूदा आप्रवासन कानून का उल्लंघन करता है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ये बताने में असफल रहे हैं कि ईरान, लीबिया समेत 6 देशों से आने वाले लोग और शरणार्थी किस तरह अमेरिका के हितों के लिए बाधा हैं। हालांकि अदालत ने कहा कि अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों की सुरक्षा जांच की प्रक्रिया की समीक्षा सरकार कर सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया था, जिसे अदालतों ने खारिज कर दिया था। इसके बाद वे संशोधित ट्रैवल बैन लेकर आए थे। अदालत के ताजा फैसले पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने यूं बचाव किया। हम सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये बहुत खतरनाक समय है और हमें अमेरिका में खून खराबा करने और हिंसा करने के लिए आने वाले आतंकवादियों के प्रवेश को रोकने के लिए सभी पर्याप्त साधनों की जरूरत है। हम मानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश देश की सुरक्षा के लिए लाया गया कानूनी आदेश है और सुप्रीम कोर्ट इसे बरकरार रखेगा। शॉन स्पाइसर के शब्द। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने कहा है कि अदालत के इस फैसले का सुरक्षा ऑपरेशंस पर गहरा असर होगा। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के बैन का वादा किया था और राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पहले फैसलों में ट्रैवल बैन का कार्यकारी आदेश भी शामिल था। 27 जनवरी के ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश के बाद अमरीका के कई हवाई अड्डों पर अफरा तफरी की स्थिति थी और देश भर में ट्रंप के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अपने संशोधित कार्यकारी आदेश में ट्रंप लीबिया, ईरान, सीरिया, सोमालिया, सूडान और यमन से आने वाले लोगों पर 90 दिन का बैन लगाना चाहते थे और सभी शरणार्थियों पर करीब 4 महीनों की रोक लगाना चाहते थे।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। डोनाल्ड ट्रंप को लगा झटका।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम।
बीबीसी हिंदी।
अमेरिका से वापस आते हैं भारत पर और बात करते हैं सरकार और किसानों के बीच चल रहे तनाव की। महाराष्ट्र में 31 लाख किसानों का कर्ज राज्य सरकार ने माफ कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में फिलहाल किसानों का प्रदर्शन थमने के संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस बीच अब तक कर्ज माफी से इनकार कर रही मध्य प्रदेश सरकार ब्याज के समायोजन पर बात करने को तैयार हो गई है, यानी किसानों का कर्ज चुकाने की शर्तें आसान करने को तैयार हो गई है। बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन से बात की तो सबसे पहले यही पूछा कि आपने तो पहले कर्ज माफी करने से मना किया था।
नहीं नहीं, मैंने कर्ज माफी के लिए इनकार नहीं किया। मैंने ये कहा है कि 2003 से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है। हमारे 1999 में प्रधानमंत्री जी अटल जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उस सरकार ने ब्याज दर को 7% किया। अटल जी की सरकार ने वह 7% ब्याज दर 2003 से 8 तक प्रदेश में लागू रहा, देश में भी लागू रहा। हमने उस 7 को घटा करके अपने घोषणा पत्र के अनुसार 3% किया 2008-09 में और 9-10 में 1% किया और उसके बाद 3 साल 0% लिया। अभी 3 साल हमने 0% लिया तो हमने तो किसान से 6 साल से ब्याज ही नहीं लिया। ऐसे 1000 रुपए में से 1000 वापस करने वाले किसान जो ऑनेस्टली ईमानदारी से लेन देन कर रहे हैं उनको, यदि जिन लोगों ने समय पर ऋण नहीं चुकाया और उनको लाभ देंगे तो उनको झटका लगेगा। और ये कोई ऋण माफी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। देखिए 25,000 करोड़ रुपया हमारा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से किसानों के ऊपर है, जिसमें से लगभग 6,000 करोड़ रुपया ब्याज सहित व्यतिक्रमी किसानों का है। उसमें आधा करीब करीब ब्याज है 2,500 करोड़ और आधा उनका मूलधन है। तो हमने एक नीति बनाई, मुख्यमंत्री ने कल घोषणा किया कि ब्याज को समायोजित करने के बारे में हम कोई पॉलिसी लेके आएंगे। तब कैबिनेट में से आएगा तो उनकी जो स्केल ऑफ फाइनेंस के बराबर उनका ऋण हो जाएगा तो उनका नवीनीकरण हो जाएगा और वो भी फिर 0% का ऋण ले सकेंगे। तो एक अवसर हम दे रहे हैं, लेकिन ये ऋण माफी किसान की समस्या का इतना समाधान नहीं है। हमको प्रोडक्शन सब्सिडी के बोर्ड जाना पड़ेगा जैसे अमरीका में, अब कैबिनेट में विषय आएगा उसके बाद में सारी स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन ब्याज ही समाजित किया जाएगा, मूलधन माफ होने का कोई विषय नहीं।
हाल ही में दो प्रदेशों की सरकारें जहां आप ही की पार्टी की सरकार है वहां कर्ज माफी दी गई है किसानों
को। पहले के सरकारों ने किसानों को अनुदान नहीं दिया ना, देखिए वहां पे माननीय मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश की सरकार ने न किसानों का अनाज खरीदा, न उनको सपोर्ट प्राइस के ऊपर उनकी वस्तु को खरीदने की कोई नीति बनाई, न ही उनको बोनस दिया। हमने तो पिछले 2 साल पूर्व राज्य के किसानों को 150 रुपए तक बोनस दिया है, उन्होंने नहीं दिया तो वहाँ के किसानों की स्थिति खराब रही, इसलिए वहाँ का किसान ज्यादा कर्ज में डूबा। हमारे यहाँ की स्थिति थोड़ी भिन्न है, हमने ब्याज ही 0 कर दिया, हमने बिजली में सब्सिडी दे दी और हमने आपको नॉर्मल बिजली दिया, हमने सिंचाई का रकबा बढ़ाया, हमने बहुत ज्यादा किया है अन्य राज्यों की तुलना में। हर राज्य की नीति अलग अलग होती है, हमारे राज्य में इस प्रकार कोई नीति की आवश्यकता मैं नहीं समझता। हम उस किसान को फिर से ऋण लेने योग्य बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे।
किसानों की नाराजगी की जड़ आप किस चीज को मानते हैं?
देखो किसान ने तो सोशल मीडिया में जो अफवाहें आई उससे वो व्यतीत होकर के सामने रोड पे आ गया। मैं 17 अप्रैल से लेकर 5 मई तक 34 जिलों में मेरे किसान सम्मेलन किसान महोत्सव हुए हैं और किसान हमारे साथ था। अचानक किसान को इस तरह का भड़काने का काम कुछ यूनियन के लोगों ने और कांग्रेस फिर बीच में आ गई, उसने उनके इस आंदोलन में मठा डालने का काम किया, तेल छिड़कने का काम किया, पेट्रोल डालने का काम किया और कांग्रेस ने नहीं भड़काती तो ये परिस्थिति नहीं बनी होती।
ये थे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन, जो बातचीत की शुरुआत में कह रहे थे कि मैंने कर्ज माफी से इनकार नहीं किया है, लेकिन बाद में वो ये भी कहते सुने गए कि कर्ज माफी जो है वो समस्या का हल नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जो राज्य कर्ज माफी जैसी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं उन्हें फंड का इंतजाम भी खुद करना होगा। देश के कई हिस्सों में किसानों के प्रदर्शन के बीच वित्त मंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं, समझने के लिए बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र ने बात की कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा से।
जब किसानों के ऋण की बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा अपना जो बर्डन है वो बड़े होशियारी से स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर डाल दिया और ये भी हमारे इकोनॉमिस्ट फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि साहब ये फिस्कल डेफिसिट स्टेट का बढ़ जाएगा, यानी वित्तीय घाटा जो है और बढ़ जाएगा, स्टेट के पास पैसे नहीं है। तो कहने का मतलब ये सारा फोकस ये है कि माहौल ऐसा बनाया जाए जबकि किसानों के कर्ज जो है वो माफ ना किए जाए। लेकिन एक बड़ी जो सिचुएशन विचित्र है वो ये है कि जब कॉरपोरेट्स के माफ करने होते हैं लोन, तो मुझे नहीं समझ आया कि वित्त मंत्री साहब हमें ये क्यों नहीं समझाते कि अगर किसानों के ऋण माफ करने हैं वो स्टेट का बर्डन है, तो जब कॉरपोरेट्स के माफ करने होते हैं तो वो स्टेट का बर्डन क्यों नहीं है? किसानों के लोन के लिए प्रदेश की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, तो इंडस्ट्री के लोन के लिए प्रदेश की सरकार क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है जहां पर वो इंडस्ट्री सिचुएटेड है? ये बहुत होशियारी से एक इकोनॉमिक डिजाइन बनाया गया है।
क्या अभी जिन राज्यों में जो जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं क्या वे सभी राज्य जनित समस्याएं हैं या केंद्र की जो कृषि नीति है उसका भी उसमें एक भूमिका है?
बिल्कुल ठीक सवाल है आपका कि बेसिकली जो भी राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें 90% जो रोल है वो सेंटर का है। सेंटर के ही जो है अनदेखी से या सेंटर के ही जो ऐसी पॉलिसीज हैं जो किसान विरोधी रही हैं, इस सरकार की नहीं पिछली सरकार की भी, उसका ये कारण है कि आज किसान जो है इतने जोश में इतने गुस्से में आज सारे देश में दिख रहा है। क्यों ये हो रहा है इस देश में कि भाई कॉरपोरेट्स के लिए किसी को दिक्कत नहीं है और अगर किसान के लिए सभी को दिक्कत है।
मेरी मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कर्ज माफी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
बिल्कुल मानता हूँ कि कर्ज माफी जो है वो स्थायी समाधान नहीं है और यही जो विचार है वो कॉर्पोरेट पे भी लागू होता है। उनकी कर्ज माफी हर साल या 2-3 साल के बाद जो होती रहती है और रिस्ट्रक्चरिंग जो होती रहती है वो भी सोल्यूशन नहीं है, लेकिन वहां तो हम अपने दरवाजे जो है खोल देते हैं। लेकिन जहां तक किसानों की बात है, कर्ज माफी बिल्कुल आज जरूरत है, सारे देश में किसानों के कर्ज माफ होने चाहिए। एक बार अगर आप उसको पूरी स्लेट को साफ कर देते हैं तो दोबारा वो इकोनॉमिक जो अपने मेन स्ट्रीम में वो आ सकता है। और लेकिन जो समाधान है वो देश में किसानों के लिए, वो सिर्फ MSP को बढ़ाना समाधान नहीं है, क्योंकि ये हमें जानना है कि MSP 6% किसानों को मिलता है, 94% किसान जो है वो MSP उनको नहीं मिलता, ना ही उनको मिल सकता है। उसके बारे में कहीं चिंता मुझे नहीं दिखाई दे रही है इन प्रदर्शनों के बाद या रोष के बाद। उसमें वो 94% किसानों का जो हक है या उनके लिए क्या हो रहा है वो कहीं भी सीन पर नहीं है। जिस मंत्री ने ये कहा है कि समाधान नहीं है कर्ज माफी, उनको ये भी बताना चाहिए कि वो क्यों नहीं हर प्रदेश में एक फार्मर्स इनकम कमीशन का गठन करें, जहां पर कम से कम किसान को 18,000 रुपए मिले, चाहे वो जमीन जोतता है या वो लैंडलेस फार्मर है। ये क्यों नहीं सरकारें करती हैं? क्यों ये दोष देती हैं कि साहब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से ही काम हो जाएगा, हमारे किसान में हमारा जोर जो है, डाइवर्शन जो है या ताकत जो है वो इस तरफ लगनी चाहिए, जो हम जानते हैं वो सोल्यूशन नहीं है।
ये थे कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा। क्या चलता है गुस्सैल भीड़ के दिमाग में, ये उनसे बेहतर भला कौन बता सकता है जिन्होंने खुद ऐसी भीड़ का सामना किया हो। बेकाबू या यूं कहें कि उन्मादी भीड़ के हमलों के मामले में झारखंड पूरे देश में कुख्यात हो गया है। चाहे वो जमशेदपुर के दो भाई विकास और गौतम की हत्या का मामला हो या सरायकेला खरसावां जिले में 4 लोगों की हत्या का मामला। अनियंत्रित भीड़ की चपेट में जो आया बेरहमी से मारा गया। भीड़ के उन्माद पर शुरू हो रही हमारी खास सीरीज की पहली कड़ी में सुनिए उन लोगों को जिन्होंने भीड़ के बीच खुद को बेबस पाया और आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखा। सलमान रावी की रिपोर्ट।
भैंस लेने के लिए गए थे, वहां हमको जी भैंस नहीं मिली, इसलिए हमने 2 गाय दूध वाली।
ये हैं पहलू खान के पुत्र इरशाद खान, जिनके पिता की हत्या राजस्थान के अलवर में उन्मादी भीड़ द्वारा पीट पीट कर कर दी गई थी।
निकल आए बैरोड मैन पुल को पास करते ही 8-7 आदमी 2 मोटरसाइकिलों पे बाइकों पे हमारे पाछे आए और उसने हमसे बोला कि गाड़ी रोक लो। हमने उससे बोला कि
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव के साथ बातचीत में इरशाद ने उस दिन के पूरे घटनाक्रम को याद करते हुए कहा,
इसलिए हमें अपनी पर्ची दिखाने की कोशिश करी ताकि उसने हमारी पर्ची नहीं देखी, हाथ में से लेकर फाड़ कर फेंक दी। हमको इतना मारा, सब लोगों को इतना मारा कि हम बेसुध रोड पर गिर दिए।
उन्मादी भीड़ के दिलो दिमाग पर जुनून सवार रहता है, एक ऐसा जुनून जो उसे हैवानियत के दरवाजे तक ले जाता है। अफवाह इस आग में घी का काम करती है। झारखंड के जमशेदपुर शहर में भी एक ऐसी ही उन्मादी भीड़ का शिकार हुए 3 भाई और उनके परिवार के लोग, जिन्हें बच्चा चोर होने के संदेह में उन्मादी भीड़ ने इतना पीटा कि उनमें से 2 भाइयों विकास और गौतम और उनके एक दोस्त ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तीसरे भाई उत्तम ने स्थानीय पत्रकार रवि प्रकाश को बताया कि किस तरह उन्होंने खुद को भीड़ के सामने बेबस पाया।
ऐसे हम लोग नागरी जैसे क्रॉस करते हैं ना, तो आप अभी देखिएगा PNT का जो पाइप लोहा नहीं होती है, रोड में गिरा करके करीब करीब 75-100 आदमी सब मतलब हथियार के साथ, मतलब पूरा कुल्हाड़ी उलाड़ी डंडा उंडा और तलवार वाला सब लेके बैठा हुआ, मतलब तीर धनुष के साथ। उसी से प्रशासन की गाड़ी आ गई। प्रशासन आ गई तो हम लोग थोड़ा हिम्मत हुआ कि चलो ये पुलिस गाड़ी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब क्या ना हम लोग, तो पुलिस वाला बोला भी अगर बच्चा चोर है तो चलो भाई चलो ये कदा सब थाना लेके चलो, सबका हिसाब होगा वहीं पर ही। तो हम लोग बोले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जाने के तैयार हुए तो सब गाँव वाले सब लोग रोक लिए, बोला नहीं जाने नहीं देंगे, समझे ना। कम से कम एक जन पर ना 20-25 जन मतलब पूरा पकड़े हुए थे पूरा। तो हम एक्चुअली माँ के साथ थे, माँ के कंधे में हाथ दिए हुए थे, तो हम तो ज़्यादा प्रेशर नहीं।
उत्तम का कहना था कि भीड़ में जमा लोग उनकी एक सुनने को तैयार नहीं थे। अपने 2 पुत्रों की मौत के बाद उत्तम के पिता सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं।
आई सभी के साथ में ऐसा दुर्भाग्य किए हैं, मेरा नसीब फूट गया है ना क्या, ऊपर वाला क्या मेरे पर कहर, हमारा बच्चा क्या होगा हमको नहीं मालूम। अच्छा। हम क्या करेंगे, हम कहीं का नहीं रहेंगे।
अच्छा लगता बच्चा,
ये तो हमको लग रहा है क्या होगा मेरे बच्चे के साथ, मेरी माँ को मार दिया।
वहीं जमशेदपुर से लगे झारखंड के ही सरायकेला खरसावां जिले में भी ऐसी ही एक भीड़ ने शोभापुर गांव पर हमला किया और 4 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। पत्रकार रवि प्रकाश ने इस पूरी घटना के चश्मदीद शमसुल हक से बात की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से भीड़ ने लोगों को घरों में से घसीट घसीट कर पीटा।
पता चला तो हम लोग प्रयास ही किए कि लोगों को समझाने का कि भाई ये बच्चा चोर नहीं है, बच्चा चोर नहीं है। लोगों का यही कहना था कि ये बच्चा चोर है और बच्चा चोर का गाड़ी है और उन्हें निकालिए, उन्हें हमारे हवाले कीजिए, यही बात जो है भीड़ जो है कह रही थी। तो हम लोग काफ़ी प्रयास किए समझाने का, लेकिन लोग किसी का बात नहीं मान रहे थे और नईम को घसीटते हुए ले जाके उसको रोड पर मार दिया गया।
शोभापुर के लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जिन पड़ोस के गाँव के लोगों के साथ वो उठते बैठते थे, वो अचानक ऐसे कैसे इतने उन्मादी हो गए।
हम लोगों को सोच से भी बाहर है और सोचते सोचते भाई हुआ क्यों, आखिर ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारा ऐसा लीडर क्लीन गांव में अगर ऐसा हो तो सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी हो तो गया, इसलिए जो है कि थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा हल्का डिफरेंस है दिल में, बाकी सब ठीक है।
अब डर भी लगता है किसी चीज़ का कि कहीं फिर से उस तरह की बात ना हो जाए दोबारा? हाँ,
कभी कभी ये सोच आती है दिल में, लेकिन फिर मुतमईन हो जाता हूँ ये सोच के कि ये लोग जितने भी हैं अगल बगल के जितने भी हमारे मैंने गाय कौम हैं, इन लोगों से हम लोगों का काफ़ी अच्छा रिलेशन रहा, बहुत ही बढ़िया रिलेशन रहा, इसलिए थोड़ा मुतमईन भी हो जाता हूँ, अब ऐसा नहीं भी हो सकता है।
झारखंड पुलिस के प्रवक्ता राजकुमार मलिक का कहना था कि जिस तरह मारे गए लोगों पर बच्चों की चोरी का आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल गलत निकला।
अफवाह कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में फैली थी कुछ कुछ जगहों पर कि कुछ लोग बच्चे की चोरी करने के लिए घूमते हैं। आज तक कोई बच्चे की चोरी की कहीं कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। ये गलत अफवाह पर ये इस तरह की घटना घटी है, लोग उत्तेजना में आकर के बिना सोचे समझे लोगों ने घटना किया है।
भीड़ के उन्माद के दो पहलू हैं, एक है पहलू खान और दूसरा पहलू उत्तम के भाई। एक तरफ ऐसी भीड़ जो अचानक जमा हो जाती है तो दूसरी तरफ ऐसी भीड़ जिसे कुछ खास राजनीतिक उद्देश्यों की वजह से किसी के खिलाफ भड़काने के लिए महीनों अभियान चलाया जाता है। रांची से रवि प्रकाश के साथ सलमान रावी, BBC दिल्ली।
ये थी उन्मादी भीड़ पर हमारी सीरीज की पहली कड़ी। पश्चिम बंगाल सरकार के बांग्ला भाषा को स्कूलों में अनिवार्य बनाए जाने से जुड़ी अधिसूचना आने के बाद से दार्जिलिंग में तनाव जारी है। गोरखालैंड की मांग को लेकर वहां हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ताज़ा स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं वरिष्ठ पत्रकार सुबीर भौमिक। सुबीर, इस वक्त वहाँ कैसे हालात हैं?
काफी तनाव है और हिंसा भी बढ़ रही है जगह जगह पर। दो तीन दिन तो इस तरह के हादसे हुए हैं कि काफी गाड़ियों को आग लगाया गया, और सबसे बड़ा जो अब देखने को आ रहा है कि जो पर्यटक, ये पर्यटकों के लिए एक सीजन था क्योंकि गर्मी के वक्त सब, दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और सबसे बड़ा हिल स्टेशन इस इलाके में है जहाँ की हजारों के तादाद में पर्यटक जाते हैं, और वो पर्यटक भारत के अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, बस ज्यादा से ज्यादा तो पश्चिम बंगाल से ही आते हैं बंगाली पर्यटक। ये सब वापस आने लगे हैं, इनको अब तसल्ली नहीं हो रहा है कि वहाँ रहना मुमकिन है, इसलिए ये सब जो है भागकर दार्जिलिंग से निकलने की कोशिश में है, और वो काम आसान नहीं हो रहा है क्योंकि अचानक एक साथ सब पर्यटक अगर निकलने की कोशिश करे तो उसके लिए प्रबंध करना बहुत आसान नहीं है।
जी, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि पर्यटकों को परेशानी हो रही है, पर्यटक कम आएंगे तो वहाँ पे जो स्थानीय व्यापारी हैं और दुकानदार हैं उनकी जो आय है उस पर भी असर पड़ेगा, तो वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन है इस पूरे घटनाक्रम पर?
स्थानीय लोग इस तरह का हादसा नहीं चाहते हैं क्योंकि दार्जिलिंग का दो मेन इंडस्ट्री, एक है चाय और दूसरा है पर्यटन, टी एंड टूरिज्म। ये दो टी जो है ये दार्जिलिंग के लिए बहुत अहम है, और अगर इस तरह के गड़बड़ी बढ़ती गई तो उसमें चाय का भी उत्पादन पर असर होगा क्योंकि अब एक महीने का बंद अगर ऐलान कर देते हैं वहां, जैसे कि अभी किया गया है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से,
जी जी,
तो उसके चाय के उत्पादन पर भी उसका असर होगा और पर्यटन भी असर होगा, तो उसमें जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनका इनकम पर उसका बेहद असर होगा। तो ये चाहते नहीं है कि इस तरह का हरकत हो, बट ये भी है कि जो ममता बनर्जी के सरकार की तरफ से ये बंगला भाषा को लेकर जो अधिसूचना जारी किया गया है, इससे वहाँ के लोग जो ज्यादातर नेपाली हैं इनमें बहुत जबरदस्त नाराजगी है क्योंकि वो ये मानते हैं कि बंगाल का कोई भी प्रशासन, पहले जो चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के BC राय, उनको छोड़कर कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर, ज्योति वासु, बुद्धदेव भट्टाचार्य या इससे पहले सिद्धार्थ शंकर रे, इन्होंने किसी ने भी बंगला भाषा जबरदस्ती थोपने का कोशिश नहीं किया।
जी जी सुबीर, हम इलाके पर, जी हमें आपको रोकना होगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अब हमारे सामने हरिता कांडपाल आ चुकी हैं तमाम अखबारों के साथ में। तो हरिता, क्या हैं आज के अखबारों की सुर्खियां?
आज के अखबारों की सबसे प्रमुख खबर, सब सारे ही अखबारों के पहले पन्नों पर मैं देख रही हूँ, नीट परीक्षा। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए जो परीक्षा का रिजल्ट अटका हुआ था उसे लेकर राहत की सांस ली है। नव भारत टाइम्स की पहली हेडलाइन मैं देख रही हूँ, नीट के रिजल्ट पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिए इस रोक को, और CBSE ने कहा है कि ये जो परिणाम है वो 26 जून तक आ जाएंगे और इसके बाद 12 लाख स्टूडेंट्स जो कि परीक्षा देने के बाद उनकी सांसें अटकी हुई थी कि रिजल्ट कब आएगा, वो अब आने वाला है और उनके लिए ये राहत वाली खबर है। दूसरी खबर जो है वो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, सभी अखबारों में देख रही हूँ। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए भाजपा ने कमेटी बनाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के अमित शाह ने राजनाथ सिंह, वेंकैया नायडू और अरुण जेटली की कमेटी बनाई है जो कि उम्मीदवार के चयन के लिए जो है NDA के सभी घटक दलों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा विपक्ष ने भी अपनी कवायद तेज कर दी है। 10 सदस्यीय उप समूह जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गठित किया था और अब उसकी 14 जून से आधिकारिक बैठकें शुरू हो जाएंगी। एक और खबर सारे ही अखबारों के पहले पन्नों पर है, इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर लिखा है कि राजस्थान में कथित गौरक्षकों की एक भीड़ ने जैसलमेर से 50 गायें और 30 बछड़े खरीद कर ले जा रहे तमिलनाडु के एनिमल हस्बेंड्री विभाग के जो सरकारी अधिकारी थे उनके साथ बदसलूकी की है, हाथापाई की है। पुलिस के मुताबिक तमिलनाडु के ये सरकारी अधिकारी 5 ट्रकों में पशु ले जा रहे थे और बाड़मेर जिले में NH 15 मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर जो है ये हमला किया गया। ट्रक को आग लगाने की कोशिश की गई और पुलिस ने जो है अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। द हिंदू की एक खबर है कि जो किंग फिशर कंपनी के मालिक हैं विजय माल्या, जिन पर जो है 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज नहीं चुकाने का मामला है, लंदन से उन्हें प्रत्यर्पण करके भारत लाने के लिए आज लंदन में वहां सुनवाई होगी।
अखबारों की सुर्खियां सुना रही थी हरिता कांडपाल।
खबर सच है अगर BBC पर है।
और अब बात खेल की दुनिया से। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। क्लब ने आखिरी लीग मैच में उसने श्रीलंका को बड़े रोमांचक मैच में हराया 3 विकेट से। जीत के लिए 237 रनों के लक्ष्य का सामना करने उतरी पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। मैंने खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली से पाकिस्तान के प्रदर्शन पर बात की तो वो बोले,
अच्छी जीत क्योंकि एक जो टीम डिजर्व करती थी। लोग हमेशा कहेंगे कि कुछ खराब फील्डिंग, श्रीलंका की एक ड्रॉप कैच बहुत क्रिटिकल टाइम पे, लेकिन पाकिस्तान ने काफी मेहनत करके और अच्छी बैटिंग करके अपना टेम्परमेंट बरकरार रख के सेमीफाइनल में जगह बनाई है।
मैं ट्विटर पर रिएक्शन देख रहा था, इस मैच की जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसको लेकर कई बातें हो रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि दोनों ही टीमें खराब खेली और पाकिस्तान चूंकि कम खराब खेली इसलिए जीत गई, इस पर आप क्या कहेंगे?
खराब कोई नहीं खेलना चाहता है, खराब खेलना जो है मैं कहूंगा कि आप कैसे जज करेंगे कि दो टीमें खराब खेल रही हैं। एक टीम ने 236 बनाए हैं, दूसरी टीम 7 विकेट गंवा के 200 उस टारगेट पे पहुंची है। जद्दोजहद थी इस मैच को जीतने की, तो मैं नहीं मानता कि खराब क्रिकेट थी, एक्साइटमेंट थी।
अब चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में हैं और अलग अलग ओपोनेंट से खेलने वाली हैं, ऐसे में अभी तक जो भी मैचेस हुए हैं सेमीफाइनल की चारों टीमों का गेम देखकर आपको भारत पाकिस्तान का फाइनल होने की कितनी संभावना लगती है?
जरूर हो सकता है भारत पाकिस्तान का फाइनल, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जब मैच खेलेगी भारत, इसमें आप एक चीज मान के चलिए कि आप किसी भी टीम को आसान नहीं ले पाएंगे और पाकिस्तान तो जोश में है। हालांकि इंग्लैंड सबसे बेहतरीन टीम नजर आई है ऑन पेपर इस टूर्नामेंट में, उन्होंने अपने 3 मैच जीते हैं और बड़े जो है डंके की चोट पे जीते हैं, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल के जीते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान का फाइनल होगा तो ऑब्वियसली जो वहाँ के दर्शक हैं भारत में, पाकिस्तान में, दुनिया भर में, वो उम्मीद रख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन
पाकिस्तान जीता और पहुंचा सेमीफाइनल में। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में प्रवेश के लिए 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन पर अदालत की रोक बरकरार है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सुरक्षा पर जबरदस्त प्रभाव डालेगा। रूस के विपक्ष के नेता एलेक्सी नावाल्नी को बिना मंजूरी के विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के मामले में 30 दिन की हिरासत में भेजा गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने संसदीय चुनाव में बहुमत खोने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों से चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए माफी मांगी। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। आज तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। तमाम साथियों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। शाम को हमारी सभा, दिन भर में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।